सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो नमो वज्रायाणं। नमो लोये सर्वसाहूणं। अथ नत्वार्हतो क्षूण चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेशते। पंडित श्री आशादर जी रचित यह सागर धर्मामृत नाम ग्रंथ है, जिसमें श्रावकाचार संबंधिया हम बातें देख रहे हैं। हम आए पृष्ठ संख्या 35 पर, 35 नंबर। यहाँ हम देख रहे थे कि गृहस्थ के जो षट कर्म है उसकी चर्चा चल रही है। तो जिनसेन आचार्य ने तो इज्जा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप बतला दिया। उसमें से वार्ता का अर्थ होता है जो श्रावक के जो आजीविका के षट कर्म है उसको वार्ता कहा था। तो उसको छोड़कर अन्य आजीविका असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प वगैरह जो है उसकी बात है, तो उसको छोड़कर, क्योंकि हमें यहाँ धर्म संबंधी उसके क्या क्या षट कर्म है उसकी बात चल रही थी, तो आशा धर्जनी वो 5 गिनाए हैं। और छठे में महापुराण के आधार से उन्होंने देव पूजा को उसमें ले लिया। इज्जा में तो वैसे पूज्य की पूजा होती है, तो उसमें गुरु उपासना को एक्स्ट्रा डाल दिया। गुरु की उपासना दत्ती ने दान। इज्जा ने पूज्यों की पूजा करना, जैसे अरिहंत सिद्ध है, हाँ देवादि की। वार्ता ने वो जो षटकर्म बताए हैं आजीविका के। दत्ती यानी दान, स्वाध्याय, संयम और तप का तो अर्थ पता है अपने को। अब दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं नीचे का। आचार्य जिनसेन ने इन सब का कथन इस प्रकार किया है। वहां उन्होंने बताया ना, नित्य मह किसको कहा, महामह किसको कहा, चतुर्मुख किसको कहा कहना, कल्प वृक्ष पूजा किसको कहना, उसकी बात यहाँ बता रहे। अपने घर से ले जाए गए गंध, पुष्प, अक्षत आदि से, जिसको हम कहेंगे अष्ट द्रव्य से, जिनालय में प्रतिदिन। हाँ
हाँ, यहाँ पर एक बात बताइए, आपको ध्यान में आई होगी,
घर से
अपने घर से ले जाए हुए। अभी तो ऐसा है, मंदिर में जाते हैं, अरे पूजा नहीं, ये नहीं लगाया,
खाली खाली
पाठ नहीं लगाया, खाली नहीं लगाए, क्या करते हैं हम, क्या बचा नहीं सकते, यहाँ क्या कह रहे हैं, अपने घर से ले गए तो उसको क्या कहेंगे, वो पढ़ लिया।
तो गंध, पुष्प, अक्षत आदि से जिनालय में प्रतिदिन अरहंत देव की पूजा करना नित्य महा है, यानी नित्य नैमित्तिक पूजन जिसको हम कहेंगे। भक्ति पूर्वक चैत्य, चैत्यालय, ये चैत्य क्या है और चैत्यालय क्या है अरविंद? चैत्य ने भगवान की मूर्ति प्रतिमा, और चैत्यालय ने मंदिर, उनके आदि का निर्माण कराकर उन्हें ग्राम आदि राजकीय नियमानुसार देना भी नित्य मह है। जिनेन्द्रों को लक्ष्य करके शक्ति के अनुसार दान आदि देना भी नित्य मह है। ये तो नित्य मह की बात बताई। अब महामह की बात बता रहे हैं। मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो पूजा की जाती है, देखो जिस काल में ये लिखा था वहां तो राजाओं की तो परंपरा चल रही थी, तो उन्हीं की अपेक्षा वर्णन है। तो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो पूजा की जाती है उसे महामह, चतुर्मुख और सर्वतोभद्र कहते हैं। उन पूजाओं के नाम बताते हैं अलग अलग। चक्रवर्ती सम्राट द्वारा प्रजा को उसकी इच्छानुसार दान देकर जो पूजा की जाती है वह कल्प वृक्ष पूजा है। अष्टांगिक पूजा तो सार्वजनिक है, सब उसे जानते हैं। इंद्र के द्वारा की गई पूजा को इंद्रध्वज पूजा कहते हैं। तीनों संध्याओं में कल बात आई थी ना, तीन संध्याओं की, रात और दिन का जो बीच का काल है उसको संध्या काल कहते हैं। फिर पूर्वार्ध अपराह्न के बीच वाला, मध्याह्न एक होता है और शाम का एक होता है। तो तीनों संध्याओं में देवता आराधना के साथ, देवताओं के आराधना उसके साथ जो अभिषेक उपहार आदि किए जाते हैं वह सब भी उक्त भेदों में ही जानना। इस प्रकार विधि विधान के साथ जो जिनेन्द्र देवों की पूजा की जाती है, विधि विधान को जानने वाले उसे इज्जा कहते हैं। यानी अरिहंत अरिहंत आदि की पूजा करना यह होगी इज्जा। विशुद्ध वृत्ति से कृषि आदि करने को वार्ता कहते हैं। उसमें हमने देखा था कृषि आदि में असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य, विद्या लिखा है वाणिज्य लिखा है शिल्प लिखा है व्यापार, वाणिज्य मान उसी का अर्थ व्यापार, वाणिज्य का अर्थ व्यापार। क्या कहा? विशुद्ध वृत्ति से मंद कषाय है, क्योंकि आजीविका के लिए ये करना है। और उसमें तीव्र लोभ रखे, खोटी बातें करे, दूसरों को कुछ पीड़ा देकर करे तो ये तो बात, क्योंकि धन कितना कमाना है, पेटी, हम तो पेटी भरने के लिए पटारा, और वो एक पीढ़ी के लिए चले, इतना भी नहीं, इतना कमा के रखना चाहते कि सात पीढ़ी बैठकर खावे तो भी उनको काफी हो जाए इतना। मेरी भाषा में साथ में ले जाने की कोई सुविधा होती तो क्या होता। नहीं नहीं, ये तो कहने के लिए, बाल बच्चों के लिए कमाता है। दान के चार भेद हैं। प्रतिग्रह पूर्वक महातपस्वियों की पूजा के साथ जो उन्हें भोजन आदि देना है वह पात्र दान है। देखो जिसको हम आहार दान कहेंगे, और वो उत्कृष्ट या उत्तम पात्र कौन है? तो मुनिराज है। और उनको कैसे आहार दान आदि दिया जाता है? प्रतिग्रह पूर्वक, जिसको हम पड़गाहना कहते हैं, यानी उस विधि होती है उसकी। पहले तो पहले अपने दरवाजे में खड़े होते हैं, कोई कलश लेके, कुंभ लेके, नारियल लेके, थाली लेके, जो अलग अलग मुनि भी प्रतिग्रह लेके निकलते हैं कि मैं अमुक ऐसा होगा तो मैं वहां रुकूंगा। फिर वो नमस्कार करते हैं, वो बताया जाता है कि आहार शुद्धि है, फिर भूमि शुद्धि है, वो सब बता के अंदर ले जाते हैं। प्रात प्रक्षालन करने के बाद उनकी पूजा की जाती, जैसे अष्ट द्रव्य से पूजन भी होती है, और बाद में विधि पूर्वक उनके आहार दान दिया जाता है। वो भी हाथ में लेते ना, पानी पात्र आहार होता है उनका, तो वो है पात्र दान। अभी अपने समान श्रावकों को जो दिया जाता है उसको समदत्ति का, समान वालों, ये तो अपने से पूज्य है। क्रिया मंत्र व्रत आदि में जो अपने समान श्रेष्ठ श्रावक है उन्हें भूमि स्वर्ण आदि देना समदत्ति है। अब सकल दत्त्य ने संपूरा का पूरा देना, किसको देंगे? अपने पुत्रों को। और देखिए क्या करता है, वानप्रस्थ आश्रम पहले जमाने में थे ना, इन्हें अपने यहाँ अयलक शुल्लक दीक्षा लेकर मुनि संघ में चले जाते हैं, तो कहते अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए अपने पुत्र को जो धनादि के साथ अपने परिवार का भार दिया जाता है वह सकल दत्ती है, यानी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। पहले के जमाने में राजा भी अपने पुत्रों को राज्य कारभार सौंपकर वन में चले जाते थे, दीक्षा लेके जाते थे, मुनि संघ में चले जाते थे, उसको सकल दत्ती का। दया के योग्य प्राणियों को अभयदान देना दया दत्ती है, जिसको हम अभयदान कहेंगे उसी को यहाँ दया दत्ती का। श्रुत की भावना को स्वाध्याय कहते हैं, इसका अभ्यास करना। उपवास आदि को तप कहते हैं, और व्रत धारण को संयम कहते हैं। असी मशी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, हमने इसके अर्थ देखे थे याद है कि नहीं। असिया ने तलवार चलाया, शस्त्र धारण करके ने सैनिक की नौकरी करना। मसी का अर्थ होता है स्याही, लेखन से पैसा कमाना। कृषि ने तो खेती करना। विद्या अलग अलग गायन विद्या है, नृत्य विद्या है, अलग विद्या के द्वारा जो आजीविका का आजीविका करना। हाँ, वाणिज्य ने व्यापार और शिल्प ने शिल्पकार। ये छह कर्म प्रजा के जीवन यापन में कारण है। जीवन यापन जिनका जीवन निर्वाह, यानी जीवन बिताना, यापन करने ने क्या बिताना, जिसको होंगे ना लाइवलीहुड के लिए क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, इसके लिए भोजन करना है, वस्त्र लाना है, जो कुछ है। षट कर्म से आजीविका करने वाले गृहस्थों को यद्यपि अल्प पाप होता ही है, कोई भी कार्य करे तो उसमें तो पाप तो क्योंकि आरंभ वगैरह सब होता है तो उसमें तो पाप अवश्य लगेगा, तथापि उसके शुद्धि के लिए पक्षचर्या साधन कहे है। ये पाप से निवृत्त होने के लिए कहो, या कोई अन्य अधिक पाप न हो इसके लिए, या लगे हुए पापों में प्रायश्चित आदि लेने के लिए, ये तीन बातें बताई। कौन सी? पक्ष, चर्या और साधन। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भावना के साथ समस्त हिंसा के त्याग को चर्या कहते हैं। मैं देवता के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, औषध और आहार के लिए हिंसा नहीं करूंगा। एक्चुअली ये सब पक्ष में आ जाएगा, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहले पक्ष नहीं, पक्ष में नहीं लिया उन्होंने, आगे उसको समझाया। पक्ष ने ये जो कोई देवताओं के लिए या मंत्र सिद्धि के लिए, औषध के लिए या आहार के लिए किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, यानी जैनियों का जो अहिंसा व्रत है उसका पालन करूंगा, इनके लिए भी मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा जिसका मत है, पक्ष है, तो उसको पाक्षिक कहते, इसको पक्ष कहते हैं। और ऊपर जो लिखा ना, समस्त हिंसा के त्याग को चर्या कहते हैं। अनिच्छा पूर्वक होने वाली हिंसा की विशुद्धि प्रायश्चित द्वारा की जाती है। अनिच्छा पूर्वक यानी हम चाहते नहीं है, फिर भी चलने में, घर में काम करने में जो हिंसा होती है। अब आप स्वाध्याय के लिए आए परंतु कार लेके आई, तो चलने में तो हिंसा तो होती है ना वहां, तो ये क्या हो, अनिच्छा पूर्वक होने वाली हिंसा। पश्चात अपने घर का सब भार पुत्र को सौंप कर गृह त्याग देना चर्या है। ये अभी चर्या आई, वो पहले पक्ष होना चाहिए था वहां पर, पहले जो चर्या लिखा है ना, वो पक्ष होना चाहिए। देखो ऊपर, देखो यहाँ 36 नंबर पेज पर ऊपर श्लोक में 18 नंबर का जो लाइन है ना, वहां देखो ये लेफ्ट साइड में, साइड में जो नंबर डाले वो लाइन नंबर के 18 नंबर के लाइन में, तत्र पक्षो ही जैना नाम कृष्ण हिंसा विसर्जन। कृष्ण ने संपूर्ण हिंसा का विसर्जन यानी त्याग, जैनियों के जो संपूर्ण हिंसा के जो त्याग होता है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थी उपब्रोहितम, यानी मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना के साथ उसको और बढ़ाया जाता है, तो उसको पक्ष कहा। ये जहाँ चर्या लिखे ना उसको पक्ष लिखो। तो उसका अर्थ क्या कि देवता के लिए, मंत्र के लिए, औषध के लिए, आहार के लिए भी बिल्कुल हिंसा नहीं करूंगा। तो ये तो हो गई पक्ष। और फिर जो हिंसा ऑलरेडी होती है अनिच्छा पूर्वक, उसको तो प्रायश्चित द्वारा उसकी विशुद्धि की जाती है। और पश्चात अपने घर का भार पुत्र को सौंप कर गृह त्याग देना चर्या है। और जीवन के अंत में भोजनादि का त्याग करके ध्यान शुद्धि के द्वारा आत्मा का शोधन करना साधन है, जिसको हम सदलेखनादि कहते हैं। हमने पेज नंबर 36 पर चर्या को, नीचे से दूसरी लाइन में चर्या को पक्ष का, और यहाँ 37 पेज पर सेकंड लाइन में चर्या है वो बराबर। अभी आगे देखते हैं, आगे पक्षचर्या साधन का स्वरूप कहते हैं। ये ऊपर एक लाइन रहेगी, महापुराण के 38वें पर्व में गर्भान्वय क्रिया के वर्णन में भी ऐसा कहा है। ये 18 नंबर हमने पढ़ा था ना, कल ही पढ़ा था मेरे ख्याल से, 34 पर हमने पढ़ा था श्लोक को। अब यहाँ 19 नंबर का श्लोक है, उसमें पक्षचर्या और साधन का स्वरूप कह रहे हैं। स्यान् मैत्र्याद्युपबृंहितोऽखिलवधः त्यागो न हिंसाम्यहम् धर्माद्यर्थमितीह पक्ष उदितम् दोषं विशोध्योज्झतः शून्यौन्यस्य निजान्वयं गृहमथो चर्या भवेत् साधनम् त्वन्ते नेह तनुच्छनाद्विशतया ज्ञात्यात्मनः शोधनम्। अभी इसका अर्थ देखते हैं। मैं धर्म के लिए, देवता के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, औषध के लिए और आहार के लिए प्राणीघात नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके। ये हर जगह प्रतिज्ञा का भी महत्व है। हमने कुछ किया नहीं परंतु प्रतिज्ञा हम नहीं ली तो कहते उसका वो फल भी नहीं मिलेगा। हाँ। जैसे हमने आलू प्याज खाए नहीं, कितने साल में, 15 साल में नहीं खाया, परंतु हमने उसके त्याग का प्रतिज्ञा उसकी नहीं की। या हम तो मध्यमांस का सेवन नहीं करते परंतु हमने प्रतिज्ञा पूर्वक उसका त्याग नहीं किया है, तो क्या उससे होने वाला जो आश्रव है, दोष है, वो चलता रहता है। जैसे आपको मोबाइल रखा है अपने, किसी का फोन तो नहीं आया परंतु आपने उसको खुला ठीक रखा है, बंद नहीं रखा है, उसका अर्थ क्या है, आने की संभावना है ना। क्यों चालू रखा, एक सुन, हाँ कोई तो करेगा, तो मैं बंद रखूंगा तो क्या होगा। तो जिसको कहें वो आश्रव का द्वार खुला रहता, तो उससे होने वाला जो है वहां पर, यानी सावधानी भी नहीं है और वैसी प्रतिज्ञा भी नहीं है, तो उस व्रत का वैसा भी उसको फल नहीं है। ये बात इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक की बात है। किसमें
प्रतिज्ञा किया,
यानी प्रतिज्ञा न करके किया, और क्यों किया पहले, ये
किया
मिला नहीं इसलिए नहीं खाया कि हाँ। किसके डर से,
कदाचित कहीं कुछ हो गया था,
यानी खाना पड़ेगा तो
कुछ किसमें आ गया खाने के लिए,
मालूम नहीं पड़ा, तो तातीचार में चला जाएगा। मगर प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेना चाहते,
प्रतिज्ञा लेके फिर अगर टूट गए ऐसे मालूम न पड़ा और खा लिया
तो उसके प्रायश्चित करवाओ, क्योंकि वो तो आपके, आपने सोच समझ कर बुद्धिपूर्वक तो नहीं खाया और उसमें जो अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, उसको तो प्रायश्चित विधि से, या फिर आगे हम चौकन्ना रहते हैं, खाने के पहले पूछ लेते हैं कि अपने साथ दूसरा कोई तो जरा खा के देखो, चख के देखो, ये तत्काल छोड़ देते हैं, ऐसे खा नहीं लेते ना उसको, मुंह में जाने के बाद तो पता चला ही ना, तो दुख दे सकते हैं उसको, ख्याल में आएगा। प्रतिज्ञा लेना ही योग्य है, यानी कर्म के लिए नहीं करना है। देखो ये तो आलू प्याज में क्या है, जहाँ अनंत जीव रहते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके आधार से निगोद राशि रहती है, और एक एक निगोद शरीर में अनंत जीव है, और हम क्यों वहाँ उसका त्याग करते हैं या खाने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ इतने जीव है, हमारे कारण उनकी हिंसा न होवे, ऐसे बिल्कुल कोमल परिणाम होने ही चाहिए। यदि ऐसे कोमल दया के परिणाम नहीं है तो उसके अध्यात्म कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं, भले वो कितना भी सुनेगा फिर भी उसको कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे निष्ठुर परिणामों के होते हुए ये विशुद्धि के काल में ही आत्मानुभव का कार्य होगा, और वो तो सामान्य सदाचार है कि पता है यहाँ अनंत जीव रहते हैं, फिर भी उसके त्याग की कोई वहां भावना नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो या तो स्वाद का लोलुप भी है, चाहता मैं जाऊं बाहर और मेरा कुछ नहीं मिले, तो मुझे कुछ नहीं मिले, तो ये तो कहीं ना कहीं अंदर पड़ी है बात, भय भय अभी। तो यहाँ कहते हैं किस किस के लिए, धर्म के लिए, देवता के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, औषध के लिए और आहार के लिए प्राणीघात नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भावना से वृद्धि को प्राप्त, असत्य आदि से सहित हिंसा को त्यागना। असत्य आदि से सहित करते तो क्या होता है, यानी पांचों पाप, अकेले हिंसा का त्याग नहीं है, पांचों पापों का त्याग, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुछित, परिग्रह, वो उसका त्यागना वो पक्ष है, पक्ष यानी उसका भी जैनी का पक्ष आ गया कि पांच पाप जो, और मुख्यतः हिंसा का त्याग और अन्य भी पापों का त्याग जो है, पक्ष संस्कार के बाद, इसको पक्ष संस्कार कहा कि उसने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि हिंसा आदि नहीं करूंगा, झूठ आदि नहीं बोलूंगा, तो उस संस्कार के बाद प्रतिदिन वैराग्य परिणाम बढ़ने पर कृषि आदि में लगे हुए हिंसा आदि दोषों का शास्त्रोक्त विधान के द्वारा शोधन करके भी उसमें वो बताएंगे क्या क्या होता है, वैसे भी वो प्रतिक्रमण आदि की भी विधि बताइए ना, दिवस के अंत में दिन में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित किया जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है, और फिर वहां पर आगे भी जो बातें हैं वो विस्तार से आएगी उसके, और पुत्र पर, ये तो अंत में, पुत्र पर अपने धन परिवार और धर्मायतनों का भार सौंप कर, ये धर्मायतन क्या होते हैं, मंदिर है, स्वाध्याय हॉल है, जो कुछ धर्म के आयतन है, तीर्थ क्षेत्र है हमारे, तो जैसे हमने तो अपने जीवन में तो उनका कुछ सम्मान किया और अभी पुत्रों पर सौंप कर हम निवृत्त होना चाहते हैं, तो यहाँ क्या कहा, किस किस का भार सौंपा उसको, धन का, फिर परिवार को पालने का और धर्मायतनों का भार सौंप कर घर छोड़ना चर्या, मुनि संघ में चले जाते हैं, ये तो श्रावक की बात है ना, अभी मुनि दीक्षा नहीं ली है, तो 10वीं 11वीं प्रतिमा की बात चल रही है। पुनः लगे हुए दोषों को प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध करके, अंत में ये जो प्रायश्चित द्वारा, प्रायश्चित होता है प्रतिक्रमण आदि जो बताए हैं, तो कितने तो डेली होते हैं, कितने तो 15 दिन के बाद होते हैं, कितने तो 4 महीने के बाद होते, कोई तो संवत्सरी के यानी वर्ष के बाद होते हैं, और पूरा उत्तम यानी वो तो आयु के अंत में हो जाता है। तो कहते हैं उसको प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध करके अंत में आहार, शरीर चेष्टा और शरीर का परित्याग करके निर्मल ध्यान के द्वारा आत्मा की शुद्धि करना साधन है। ये तो अंतिम संलेखना की बात है, विशेषार्थ यहाँ पक्षचर्या साधन का स्वरूप कहा है, पक्ष में झूठ चोरी आदि पापों के साथ हिंसा का त्याग किया जाता है। यतः सागर धर्म का प्रकरण है, अतः त्रस हिंसा का ही त्याग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, अभी वो श्रावक है इसलिए। तथा मंद कषायी भी गृहस्थ चूंकि घर में रहता है, गृहस्थी के सब काम करता है, आरंभ करता है, अतः आरंभी हिंसा तो छोड़ नहीं सकता, केवल संकल्पी हिंसा को ही छोड़ देता है। संकल्पी यानी वो तो जानबूझकर या किसी कार्य के लिए, हाँ, इंटेंशनल, क्योंकि आरंभी हिंसा तो गृहस्थ को अवश्य होती है। उसी संकल्पी हिंसा के चार रूप है, अलग अलग प्रकार बताए। कैसे हो सकती है संकल्पी हिंसा? धर्म मानकर लोग पशुओं की बलि देते हैं, धर्म के लिए यह हिंसा करते हैं, धर्म के नाम पर। जैसे यज्ञों के समय में पशु होम होता था, वहां तो पशुओं को अग्नि में डाला जाता था। मनुस्मृति में इसका विधान है, यह अन्य मतियों का शास्त्र है। काली आदि देवताओं के लिए तो आज भी बलि प्रचलित है। मंत्र सिद्धि के लिए भी तांत्रिक मांत्रिक मनुष्य तक की बलि दिया करते थे। आजकल भी सुनने में आता है, कहीं कहीं चलता रहता है, हा? प्राणियों के तो बलि देते ही है, ये तो मनुष्यों के या बच्चों के भी बलि दिए जाते हैं। औषधि और आहार के लिए तो आज भी प्रतिदिन करोड़ों पशु मारे जाते हैं। इस तरह संकल्पी हिंसा के ये पांच प्रचलित द्वार है। पांच कौन सा लिया? ये चार तो बताए उन्होंने।
औषध और आहार अलग
ही है। हाँ, औषध और आहार अलग ही है। औषध है, आहार है, मंत्र सिद्धि है, देवता है और धर्म है। यानी धर्म मानकर लेना और देवताओं के लिए सब अलग अलग लेना। नहीं नहीं, देखो, धर्म के लिए, देवता के लिए, फिर मंत्र सिद्धि के लिए, औषध के लिए और आहार के लिए, ये पांच हो सकते हैं। हाँ, धर्म के लिए, धर्म मानकर ये करने से धर्म होता है, ऐसा मानते हैं। हाँ, पशु बलि कौन से भी है। दूसरा देवताओं के लिए, यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसको। यानी ये इसमें धर्म होता है ऐसा मान्यता ही नहीं थी। उस जमाने से तो आज कुछ सुधरे के नहीं लोग। 800 वर्ष पहले लिखा था तो आज क्या हुआ? और बढ़ोतरी हुई क्या? कम कम हुई हिंसा, बढ़ोतरी ज्यादा हुई। ये तो हो गया। अतः जिसे जैनत्व का पक्ष होता है, ये पाक्षिक श्रावक क्यों कहते हैं, जैनत्व का पक्ष होता है, वह सबसे प्रथम इन पांच कामों के लिए जीव वध न करने का नियम लेता है। इसके बिना वह जैन कहलाने का भी पात्र नहीं है। वही तो, वही ऐसी औषधि टाल कर
दारू में बहुत सी, दारू में उसका बेस रहता है,
अल्कोहल बेस वाली, अल्कोहल बेस वाली जो होती है, जैसे लिवर का एक्सट्रैक्ट है, अभी इसको तो आप डाल सकते हैं।
मध के साथ बोल लेते हैं,
वो तो शक्कर के उसके भी साथ ले सकते हैं, जो मध में लेने वाली औषधि। इसके बिना वह जैन कहलाना की भी पात्र नहीं है। इसके साथ ही उसमें चार भावनाएं भी होनी चाहिए। पहले है मैत्री भावना। संसार के प्राणी मात्र को अपना मित्र मानना और अपने को उनका मित्र मानकर एक मित्र की तरह उनके दुख और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न मैत्री है। अब दूसरी, प्रमोद भावना। जो गुणीजन है, ज्ञानी है, तपस्वी है, परोपकारी है, उनके प्रति प्रमोद भाव होना, उन्हें देखते ही आनंद से गदगद हो, उनका सम्मान आदि करना प्रमोद है। तीसरी, कारुण्य भाव। जो कष्ट में हो, दीन दुखी हो करुणा बुद्धि से उनका सहाय करना कारुण्य भावना है, उनकी सहाय होती है ना, सहाय। अच्छा, सहायता हो गया तो उनकी होगा, उनका सहाय करना, ठीक है। अब मध्यस्थ भावना, ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छी शिक्षा देने पर भी रुष्ट होते हैं, उनके प्रति मध्यस्थ भाव, अर्थात उनसे राग द्वेष न करके उपेक्षा करना, यह चौथी भावना। उस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं निगलेक्ट करना, यह है मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ समझते हैं, मध्यम परिणाम रखना। इन भावनाओं से उक्त अहिंसा व्रत में वृद्धि होती है। इस तरह जब वह परिपक्व हो जाता है तो अपने दोषों का प्रायश्चित करके दर्शनिक आदि प्रतिमा के व्रत पालता है, अर्थात जो जो उसमें रागादि की हीनता होने से निर्मल चिद्रूप की अनुभूति बढ़ती जाती है। ये तो मुख्य बात है, हमने देखा था प्रतिमाओं का स्वरूप अंतरंग में और अनुभूति स्वरूप है, और बाह्य में व्रतादि रूप है। तो जैसे जैसे उसके रागादि की हीनता होती है और शुद्ध चिद्रूप की अनुभूति बढ़ती चली जाती है, क्यों त्यों वह बाह्य त्याग की ओर भी विशेष बढ़ता जाता है। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस तरह दर्शनिक से लेकर अनुमति विरक्त तक जितना श्रावकाचार है वह सब चर्या में गर्भित है, क्योंकि आगे आगे क्यों लेते हैं प्रतिमा, तो ये सारा चर्या में गर्भित। पक्ष में तो उसको पक्ष आया है जैनत्व का, और आगे सारी ये चर्या की बात है, बढ़ती हुई उसके परिणाम होते हैं, अनुभूति भी बढ़ती है और बाह्य में व्रतादि के परिणाम भी बढ़ते चले जाते हैं। अनुमति विरत के बाद, उसके बाद कौन सी है, वह अपने पुत्र या योग्य दत्तक पर सब भार छोड़कर घर छोड़ देता है। यहाँ अंत से दो अभिप्राय है, घर छोड़ देने पर और मरण के समय पे। अंत में वो सब छोड़ देता है, लिखा ना, तो अंत में या तो मरण नजदीक आया है तब, या घर छोड़कर संघ में जाना है। घर छोड़ने पर कुछ नियत समय के लिए भोजन शारीरिक चेष्टा और शरीर का ममत्व त्याग कर निर्मल ध्यान के द्वारा आत्मा से रागादि दोषों को दूर करना भी साधन है। यह ग्यारहवीं प्रतिमा के पालन रूप है, उद्दिष्ट त्याग। और मरते समय जीवन पर्यंत के लिए ऐसा करना भी साधन है। मरते समय जीवन पर्यंत नहीं, जितना जीवन बाकी है तब तक आत्मा की शुद्धि तो रागादि दोषों के छोड़ने से ही होती है, और उसके लिए ऐसे ही शुद्ध ध्यान की आवश्यकता है जो रागादि दोष से दूषित न हो। यानी शुद्ध ध्यान के द्वारा रागादि दोष तो और मिटते चले जाते। धर्म का एकमात्र उद्देश्य यही है। अब पक्ष आदि भेदों के द्वारा श्रावक के तीन भेदों का अवतार करके संक्षेप से उनका लक्षण कहते हैं। ये 20 नंबर के पाक्षिकादिभिदात्रेधा श्रावकस्तत्र पाक्षिक तद्धर्म गृह्य तस्निष्ठो नैष्ठिक साधक स्वयुक्त। इसका अर्थ नीचे दिया है, देखो, पाक्षिक नैष्ठिक और साधक के भेद से श्रावक के तीन भेद हैं। उनमें से जो एक देश हिंसा विरति रूप, एक देश क्या होता है, पार्शल, संपूर्ण नहीं है, थोड़ा। उनमें से जो एक देश हिंसा विरति रूप, ये एक देश में किसको किसको लेना मात्र से हिंसा का त्याग, अभी स्थावर हिंसा का त्याग उसके नहीं हो सकता। तो एक देश हिंसा विरति रूप श्रावक धर्म का पक्ष लेता है, पक्ष लेना है अर्थात उसका पालन करता है, पालन करना स्वीकार करता है, वह पाक्षिक है, इसको पाक्षिक श्रावक। और जो उसमें निष्ठा रखता है अर्थात निरतिचार श्रावक धर्म का निष्ठापूर्वक निर्वाह करता है, पहले तो स्वीकार करता है, पालन करना उसके स्वीकार है, वो पाक्षिक हुआ।
अब पूर्वक बराबर
हाँ, निष्ठापूर्वक में वह के ऊपर वो रफार देना। क्या कह रहे, निरतिचार श्रावक धर्म का निष्ठापूर्वक निर्वाह करता वह नैष्ठिक है। जो अपने में समाधि लगाता है अर्थात समाधि पूर्वक मरण साधता है वह साधक है। विशेषार्थ, पहला भेद देश संयम की, देश करना देश हुआ, देश संयम की प्रारंभिक अवस्था को बतलाता है। दूसरा भेद उसकी मध्यम अवस्था को बतलाता है और तीसरा भेद उसकी पूर्ण दशा को बतलाता है, क्योंकि है तो श्रावक के भेद। तो जो 11 प्रतिमा में इसको फिट करेंगे ना, तो शुरू में उसको पाक्षिक कहेंगे, बीच मध्य में नैष्ठिक और अंत पूर्ण दिशा को साधक करेंगे। इस प्रकार पंडित आशाधर रचित धर्मामृत के अंतर्गत सागर धर्मामृत की स्वपद्य संस्कृत टीकानुसारिणी हिंदी टीका में प्रारंभ से 10वां यानी अनगार को लेकर ये 10वां नंबर है और सागर धर्म की अपेक्षा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब सागर धर्मांतर का दूसरा अध्याय यहाँ शुरू हो जाता है, पृष्ठ संख्या 40। इस प्रकार पहले अध्याय में सागर धर्म की सूचना मात्र करके विस्तार से पाक्षिक श्रावक का आचार कथन करने की इच्छा से ग्रंथकार सबसे प्रथम जिस प्रकार के भव्य जीव को धर्माचार्यों ने सागर धर्म पालने की अनुज्ञा दी है उसको बतलाते, यानी सागर धर्म कौन पालता है उसकी बात यहाँ बताएंगे। त्याज्यान जस्रम विषयान पश्यतोपि जिनाज्ञया मोहात्यक्त्युमशक्तस्य गृही धर्मो अनुमन्यते। क्या कहते हैं, जिनेन्द्र देव की आज्ञा से इष्ट स्त्री आदि विषयों को न सेवने योग्य जानते हुए भी जो प्रत्याख्यानावरण नामक चारित्र मोह के तीव्र उदय के कारण त्यागने में असमर्थ है उन्हें धर्माचार्य गृहस्थ धर्म पालने की अनुज्ञा देते हैं। क्या कहा, जो मुनि दीक्षा अंगीकार करने के लिए समर्थ नहीं है, स्त्री आदि को इन्हें सब परिग्रह वगैरह सब समझ लेना, इनका त्याग करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए बात है। और प्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय बताया, यानी सम्य दृष्टि तो है, हाँ पंचम गुण स्थान करती है, और प्रत्याख्यानानुबंधी को तो लिया नहीं है। विशेषा नहीं, देखो गृहस्थ धर्म एक शब्द है, नहीं तो धर्माचार्य गृहस्थ कहेंगे आप, ऐसा नहीं है। धर्माचार्य गृहस्थ धर्म पालन
के बाद
कौमा नहीं लेना, वो उसको रुक के बोलना, रुक के बोलना, पर गृहस्थ और धर्म को इकट्ठा करो, एक लाइन से जोड़ दो उसको। हाँ, जहाँ जहाँ मुनि धर्म है, जहाँ जहाँ श्रावक धर्म है, गृहस्थ धर्म है, एक शब्द करने से सही अर्थ होगा, नहीं तो ऐसा कोई पड़ेगा धर्माचार्य गृहस्थ धर्म पालने की अनुज्ञा देते, ऐसा नहीं है। अब विशेष अर्थ देखेंगे इसका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के। मेरे भाई ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ किसने लिखा है, बाजू वाले को पूछना। कौन है, अमृत चंद्राचार्य और टीकाकार पंडित टोडन है। हाँ हाँ आचार्य अमृतचंद्र का है ये
ग्रंथ।
नहीं 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 तत्वार सार है वो अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है उसका नाम है तत्वार सार, वो अलग है और ये है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये तो श्रावक का धर्म का लिखा है ना। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद जी ने कहा है कि मुनीश्वरों की वृत्ति अलौकिक होती है, वह पाप क्रिया से युक्त आचार से विमुख और सर्वथा विरोधी रूप होती है। मुनीश्वरों की वृत्ति उनका आचरण कैसे होता है तो पाप क्रिया से बिल्कुल विमुख और सर्वथा विरति है, यानी त्रस साव हिंसा से पूर्णतः विरत है। यतः श्रावक का आचार पाप क्रिया से मिला होता है, अतः मुनि उससे विमुख होकर केवल निज स्वरूप का अनुभवन करते हैं, इसलिए वे गृहस्थाचार का उपदेश न देकर क्या कहते हैं, वो स्वयं तो मुनि धर्म अंगीकार कर रहे हैं, पूर्ण रूप से विरत हुए हैं, तो श्रावकाचार का पहले उपदेश कैसे देंगे, चलो ये तो इसकी हिंसा टालो सावर की चलो माफ या ऐसा थोड़ी बताएंगे। तो कहते पहले में पहले उपदेश किसका देंगे तो मुनि धर्म का ही देंगे। तो कहते अतः मुनि उससे विमुख होकर केवल निज स्वरूप का अनुभव करते, इसलिए वे गृहस्थाचार का उपदेश न देकर समस्त विरति रूप मुनि धर्म का ही उपदेश देते हैं। किंतु बार बार समस्त विरति रूप मुनि धर्म का उपदेश देने पर भी जो ग्रहण नहीं करता उसे श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। किंतु जो अल्प बुद्धि मुनि मुनि धर्म का उपदेश न देकर, ये दो बार मुनि आए ना तो दूसरा जो मुनि है वो धर्म के साथ जोड़ दो, अल्प बुद्धि मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का ही उपदेश करता है, उसे जिनागम में दंड के योग्य कहा है, क्योंकि इस तरह मुनि धर्म का कथन न करके गृहस्थ धर्म का कथन करने से श्रोता यदि मुनि धर्म धारण करने के लिए उत्साहित हो तो उस दुर्बुद्धि के द्वारा, किसको दुर्बुद्धि कहा, वो अल्प बुद्धि मुनि को, गृहस्थ धर्म में ही संतुष्ट होकर रह जाने से ठगा जाता है। यानी उसकी तो उत्साहित था मुनि धर्म अंगीकार करता, परंतु मुनियों ने उसको तो पहले श्रावक की बात बताई तो कहते वो ठगा गया। अतः ऊपर कहा है, परंतु अभी इसके उल्टे भी उसका हो रहा है, ऐसा लिखा है ना, पढ़ते हैं कोई तो हम तो पहले जबरदस्ती मुनि बनाएंगे, क्योंकि स्वयं भी वो सच्चे मुनि नहीं है और बस अपने शिष्यों को बढ़ाने के लिए, जैसे कल वो प्रतिमा की बात आई थी ना, सामने वाले जीव को पता ही नहीं है तत्व ज्ञान का, कुछ अभ्यास नहीं, क्योंकि ये जो दिया जाता है तो पात्रता देखकर ही दी जाती है मुनि दीक्षा भी, वो तो समय दृष्टि होने चाहिए, वो तो श्रावक होने चाहिए, तब आगे चलकर उनको मुनि धर्म का उपदेश दिया जाएगा। क्योंकि तो ऊपर कहा है कि धर्माचार्य उसे ही गृहस्थ धर्म पालने की अनुज्ञा देते हैं जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होने से यह जानता है कि वीतराग सर्वज्ञ देव का शासन अनुल्लंघ्य है, अनुल्लंघ्य यानी उसका उल्लंघन नहीं किया जाता, यानी वही एक में सत्य बात है और उसमें संसार के विषयों को त्याज्य कहा है, यानी वो सम्यक दृष्टि है, जिनेन्द्र भगवान की परम श्रद्धा है, यही सत्य है, ये जानता है और उन्होंने बताया कि संसार के विषय में कोई सुख नहीं और वो त्याज्य है, परंतु अभी वो त्यागने के लिए समर्थ नहीं है उसी के अपने कमजोरी के कारण, किंतु ऐसा जानते हुए भी उसने अपने अविचारित कार्यों के द्वारा जो चारित्र मोहनी कर्म का बंधक किया हुआ है पहले में, उसके तीव्र विपाक से, तीव्र उदय से, वह उन्हें छोड़ने में असमर्थ होता है। अनंतानुबंधी कषाय से जो परतंत्र होते हैं वे तो विषयों को सेवनीय ही मानते हैं। यहाँ किसकी बात है? ये दो अलग अलग बातें हैं। ये तो सम्यक दृष्टि है, वो जानता है कि विषय छोड़ने योग्य है, फिर भी उससे अभी छूट नहीं पाता है। उसके अपने ही कमजोरी से कहो या निमित्त की भाषा में कहना है तो चारित्र मुनि के तीव्र उदय से कहो, वो छोड़ नहीं पा रहा। परंतु मिथ्या दृष्टि कैसा है? स्वच्छंदीय, वो तो सेवनीय ही मानते हैं। अनंतानुबंधी कषाय वाले ने कौन है? मिथ्या दृष्टि है, वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनकी यहाँ बात नहीं है। ये तो सारे सम्य दृष्टियों की बात चल रही है। तो सम्य दृष्टि है तो उसको मुनि धर्म पालने का पहले उपदेश दिया जाएगा, वो उसमें समर्थ नहीं है तो फिर उसको श्रावक धर्म पालने की। परंतु सम्य दर्शन ये तो आवश्यक कंडीशन है दोनों के लिए। जो उससे छूटकर यह तो दृढ़ आस्था रखते हैं, उससे छूटकर नहीं, मिथ्या दर्शन से छूटकर यह तो दृढ़ आस्था रखते नहीं, वो जो सम्य दृष्टि है कि ये विषय सेवनीय नहीं है, किंतु उन्हें छोड़ने में असमर्थ होते हैं, वे नियम करते हैं यानी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एक देश विरति को अर्थात श्रावक के आचार को पालूंगा, और आचार्य उन्हें अनुज्ञा देते हैं। इससे आचार्य पर यह दोषारोपण भी नहीं हो सकता कि उन्होंने श्रावक को स्थावर जीवन का घात करने की अनुमति दी है। क्या इसका अर्थ है? ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको छूट दी है, वो श्रावक स्वयं उसको पालने में असमर्थ है, तो वो श्रावक धर्म पाल रहा है, मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर रहा है, वो उसकी अपनी कमजोरी के कारण। मुनि ने उनको छूट दिया ऐसा नहीं कहेंगे, या उसका स्थावर का हिंसा का उपदेश दे रहे मुनि ऐसा मत कहना कहते। अतः ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति सब प्रकार की हिंसा में आसक्त है, उसने यदि जैनाचार्य त्रसहिंसा का त्याग कराते हैं, उससे यदि जैनाचार्य त्रसहिंसा का त्याग कराते हैं, यानी क्या कहा? वो तो सब प्रकार के पापों में था या सभी प्रकार की हिंसा चल रही थी, अब उसमें से त्रस की हिंसा का त्याग कराया उसको, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने स्थावर जीवों को मारने की स्वीकृति दी है? ये प्रश्न चिन्ह करने हैं, यानी उन्होंने स्वीकृति तो नहीं दी है। यदि वो स्वीकृति देंगे तो उनको भी वो कृतकारित अनुमोदना का पाप लगेगा, उनको मुनि धर्म नहीं रहेगा। वे तो उससे सभी प्रकार की हिंसा छुड़ाना चाहते हैं, तो वो स्वयं नहीं छोड़ रहा है, तो नेक्स्ट उसको क्या कहेंगे? श्रावक पालने का उपदेश देंगे। अब सम्य दर्शन से विशुद्ध प्राक्षिक श्रावक को, यानी वो सम्य दृष्टि है, उसको जैनत्व का पक्ष है, अहिंसा की सिद्धि के लिए मध्य आदि के त्याग में लगाते हैं। ये ऊपर जो दो नंबर का है ना, हमने पहले नंबर के श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ भी देख लिया। अब ये दो नंबर, तत्रादौ श्रद्धधज्जना मान्याम हिंसाम पासितुम मध्यमांस मधुन्युज्जेत पंचक्षीरी फलानि च। देखो, गृहस्थ धर्म में सबसे पहले जिनागम की आज्ञा का श्रद्धान करते हुए हिंसा को छोड़ने के लिए देश संयम की ओर उन्मुख यानी उसके सन्मुख पाक्षिक श्रावक को मध्य मांस मधु पांच क्षीरी फलों को और च शब्द से लिए गए मक्खन रात्रि भोजन और बिना छने जल आदि को छोड़ना चाहिए। अभी अलग अलग श्रावकाचारों में कहो अलग जगह वो आठ मूल गुणों का स्वरूप भी अलग अलग बताया है, किसी ने उसमें कौन किसी को स्वीकार है कि किसी ने किसी को स्वीकार है, परंतु मध्य मांस मधु को तो लिया है, किसी ने मधु के बदले और भी बात बताइए। पांच क्षीरी फल, एक क्षीरी फल क्या होता है? उदुम्बर फल जिसको कहेंगे, तो क्षीर क्यों कहा उसको? दूध निकलता है किसमें से? फल में से नहीं, वो पत्ते हैं ऐसा काटेंगे, ये डाली छोटी डाली काटेंगे तो उसमें से सफेद निकलता है, चिक चिकना ऐसा। तो और ये फलों की क्या विशेषता है मालूम है? नहीं, ये थड़ पर लगते हैं, ट्रंक। जैसे आपने देखे होंगे फनस, देखे है ना, ट्रंक पे लगता है, थड़ पर। आपने वो अंजीर के वृक्ष देखे होंगे या उम्बर के, देखो लो इधर भी है। हाँ, तो वो क्या थड़ पर लगते हैं डायरेक्ट। हाँ, जैसे आम कैसे लगता है, पहले वहाँ फूल आते हैं, फिर वहाँ उस जगह या अनार है, कुछ भी अन्य जो फल है वो कैसे आता है, तो एंड में डाली में अंत में लगते हैं। पहले वहाँ फूल उगता है, फिर फूल के नीचे वो फल तैयार होता है, इस तरह से। और ये कैसे, तो डायरेक्ट वो थड़ पर लगते हैं। बोटनिकली भी इसमें देखेंगे तो उसको अंतर कुछ भी ऐसा कुछ नाम है उसका, यानी वो तो अंदर ही रह जाते हैं और उसमें जीव रस जीव वहां रह जाते हैं और वो अंदर ही अंदर मर भी जाते हैं। और जब फल खोलते हैं तो उसमें तो कितने उड़ते हुए कीड़े भी दिखाई देते हैं। और मैंने एक लेख पढ़ा था, बॉटनी का संदर्भ में था वो, या ऐसे ही उसके जो पुष्प अंदर हो जाते हैं और उसके फर्टिलाइजेशन तभी हो जाता है जब कोई कीड़े आकर उसमें बैठ जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं, अंदर ही मर जाते हैं और वहां दूसरे भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये खाने के अयोग्य बताया। यानी उसका लक्षण ये थड़ पर लगते हैं। दूसरी बात, उनके ऐसे पत्ते काटने पर उसमें से सफेद, इसलिए उसको क्षीर लिखा है उसमें, क्षीरी फल। सफेद निकलता है। और दूसरी बात, उसके अंदर जीव है, रस जीव उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि वो अंजीर वगैरह का सेवन तो बहुत करते हो, तो ड्राई फ्रूट तरीके से भी उसको बहुत यूज करते हैं, परंतु जैनी तो इन पांच उदंबर फलों का बिल्कुल सेवन नहीं करते। ये तो सब मिलता है, दुनिया में क्या नहीं मिलता। देखो अब यहाँ हम पढ़ेंगे इसको, विशेषार्थ। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब गृहस्थ सम्यक दर्शन से विशुद्ध होता है तब अहिंसा की सिद्धि के लिए मद्यमांस आदि का त्याग करता है। यानी वो पहले खाता होगा ऐसी बात नहीं है, परंतु यह विशेषता बतानी है ना।
ये मक्खन के बारे में जरा और बताना मानी,
मक्खन की भी बात है जिसको नवनीत कहा है, क्योंकि वो निकालने के अंतर्मुहूर्त के बाद उसी जाति के उसमें जीव उत्पन्न होते, त्रस जीव उत्पन्न होते उसमें, वो तो दिखते नहीं है, उसी कलर के होते हैं, उसी जाति के होते हैं।
पंजाबी डिशेज में तो सब में रहता ही होता
है। अभी घर की डिश खाओ ना, बाहर की डिश क्यों खाना चाहते हैं? मक्खन और मलई में, मक्खन और मलई में, मक्खन तो वो छाछ में से निकालने के अंतर्मुख के अंदर उसको, वो तो उसका घी भी बनाना चाहिए, उसके अंदर ही उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। पहले अंदर अंतर्मुख के अंदर
हम लोग तो मलाई माने, लोग माने कहने का मतलब ऐसा देखा गया है, मलाई
करते हैं, नहीं पर उसमें वो तो ये डालते हैं ना, क्या वो डाल के, हाँ, और फिर उसमें से निकालेंगे तो बाहर नहीं ज्यादा रखना, वो तो तत्काल उसका घी बनाना चाहिए,
आप अलग कह रहे
हैं। वो तो कहते हैं मलाई हम इकट्ठा करते हैं और फिर दो चार दिन के बाद उसका, पहले तो बहुत सारा निकलता ना, डेली बनता था। तो अभी टाइम नहीं है। देखो, हाँ, सेकंड लाइन विशेषार्थ की, मध्य मांस आदि के त्याग का सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। हाँ, सम्यक तो होने पर उसकी उनसे अरुचि हो जाती है। जैन घरानों में मध्य मांस का सेवन न करना कुल धर्म है। इसी तरह जैनेतर भी बहुत से ऐसे धार्मिक घराने हैं जैसे वैष्णव आदि, उनमें भी मध्य मांस का सेवन नहीं है, किंतु इससे उन्हें पाक्षिक श्रावक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसको जीना जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा नहीं है। पाक्षिक श्रावक की श्रेणी में तो वही आता है जो जिन वचनों पर श्रद्धान करके मध्यमांस आदि का त्याग करता है। मात्र कुल परंपरा से उनका सेवन करने मात्र से, उनका सेवन ही नहीं कुल धर्म का सेवन करने मात्र से पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जैन कुटुंब में है तो उसने बचपन से उसको लिया नहीं, सेवन नहीं किया है। परंतु यदि उसका श्रद्धान नहीं है जिनेन्द्र भगवान पर या उनकी वाणी पर, तो उसको पाक्षिक श्रावक भी नहीं कहेंगे। अतः जैन घरानों में जन्म लेने वालों को भी जिनागम के कथन को जानकर और उस पर श्रद्धा रखकर नियमानुसार मद्यादि का त्याग करना चाहिए। नियमानुसार यानी प्रतिज्ञा लेकर, नियम यानी प्रतिज्ञा करने को यहाँ नियम लेना कहते। अभी तक रुके क्या प्रतिज्ञा लेने से? अरे हमारे घरों में तो ऐसी है कि 40 दिन का बालक होता है मंदिर में ले जाने जाते तो उसके कान में मंत्र देके व्रत भी दिए जाते हैं, और माँ की जिम्मेदारी होती है जब तक बालक 8 वर्ष का है तब तक वो स्वयं उसके लिए चौकन्ना रखे। और फिर बालकों को भी बचपन से यही सिखाया जाता है और ये कुल परंपरा चलती है। स्वयं ही करना है ना, मैं आज से आजीवन इसका त्याग करना चाहता हूँ। नहीं होता है तो 8-8 दिन के लिए ले लो, महीने के लिए ले लो, 4 महीने के लिए ले लो। केवल न सेवन करने से वे व्रती नहीं माने जा सकते, और वो हेल्थ खराब होती है इसलिए नहीं खाते तो कहते वो भी व्रती नहीं है, क्योंकि शरीर मैं हूं मान रहे हैं और उसके लिए करना चाहता है, जिन्हें वो अहिंसा पालने के लिए नहीं करना चाहता। जो मद्यादि का नियमानुसार व्रत लेता है, नियम के अनुसार व्रत लेता है, वह फिर कुसंगति में पड़कर भी मद्यादि का सेवन नहीं करता, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली है उसकी। किंतु जो अपने घर के कारण मद्यादि का सेवन नहीं करते, क्योंकि क्या करे अपना कुल धर्म है या हमारे घर में तो नहीं पीते, इसलिए जो नहीं पी रहा है वे संगति दोष से उसका सेवन करने लगते। मित्रों के साथ वो चलता है, आजकल जैनियों के भी बच्चे कहाँ जैनी रहे हैं, तो उसको ये चलता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है करके क्या है, सब जगह चल रही बात कि हम तो रोज तो नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं, पार्टी में लेते हैं, दूसरे पिलाते तो लेते हैं। अभी आपको पता है आप बाहर घूमते क्या क्या, हम तो घर में बैठे बाहर क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। पता नहीं हमारे पास अभी फैमिली कुछ नहीं रही क्योंकि हमारे बेटियों की तो शादी हो गई, अभी कितने साल हो गए। होटलों के खान पान से, कुल धर्म बुद्धि से यानी कुल बुद्धि से धर्म बुद्धि से मध्य मांस का सेवन न करने वाले भी सेवन करने लगते हैं। यानी उनके तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी पता नहीं, जिनेन्द्र का स्वरूप ना ही उनकी वाणी का स्वरूप, इसलिए उनकी उस पर श्रद्धा नहीं है। कोई कहेगा तो कि ये क्या कितने जमाने की कौन सी बात कर रहे हैं, 1857 की किसने देखा ऐसा पूछेंगे। हमारे साइंटिस्ट ने तो माइक्रोस्कोप ने नहीं देखा और आप कहाँ की बात कर रहे हैं, ऐसा भी पूछेंगे। सभी है, इसीलिए ये जो सब आचार बताया है, ये चलित रस वगैरह क्यों बताया है, कोई खराब होता है तो उसमें तो ये तो जीव जंतु उत्पन्न होने लगते हैं, सरा गला जो है।
आपके जो प्रश्न है उसके सारे के उत्तर
इसमें आने वाले सारे।
आपने जो पूछा था कि आपके मंदिर में अलग अलग ओपिनियंस है, उसकी भी चर्चा होगी।
हो गया
समझो को मारना हुआ बहुत है, अन्यथा नहीं है, उसकी भी बात आने वाली है।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकारो सोवानी मस्तक